प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
हमको जलते दीप है यीशु की ज्योति के, हमको जलते दीप है यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां रे डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधिया रे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैला जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, कहा आवाज सबको आओ मेरे पास, दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास। पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश, जिसने पाया है
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर से प्रेम रखते हुए अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने एक अध्याय उसके 16 पद तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन हम दूर में रह करके भी एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हमारे बीच जो भी वचन बांटा जाता है निश्चित रूप में हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में और तनाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। हाँ प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि हम सब मिल करके आपके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें, आपको धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अत्यधिक आनंद से पूर्ण इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उनकी आत्मिक समृद्धि की प्रार्थना भी करता है। तो आइए हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ें। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ध्यान दीजिए, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को यह तो लिखा ही कि कलीसिया मसीह की देह है और पिता परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, पुत्र परमेश्वर ने उसका मूल्य चुकाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। परंतु उसे फिर यह बोध हुआ कि वे इन बातों को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि पवित्र आत्मा उनका शिक्षक न हो और उनके लिए परमेश्वर के वचन को प्रकाशमान न करे। परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा ही प्रदान कर सकता है। डॉक्टर एच ए आयरनसाइड की भेंट एक महान प्रचारक से हुई जो स्वास्थ्य के कारणों से नीदरलैंड से वहां आए थे और डॉक्टर आयरनसाइड के माता पिता के घर के पीछे एक तंबू में रहते थे। वह अपने जीवन के अंतिम समय में थे। परमेश्वर ने उसका भरपूर उपयोग किया। डॉक्टर आयरनसाइड उस समय एक युवक थे और प्रायः उसके साथ बैठकर बाइबल अध्ययन करते थे। उसकी वचन की समझ से प्रभावित होकर उन्होंने एक दिन पूछा, आपने यह सब कहां से सीखा है? उसने कहा, मैं तो कभी किसी बाइबल अध्ययन कॉलेज में नहीं गया और न ही कभी किसी बड़े महासभा में गया। मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं। मैंने यह सब एक झोपड़ी में मिट्टी के फर्श पर या जमीन पर घुटने टेक कर सीखा है। वहां मैं घंटों घुटनों पर प्रार्थना करता था कि पवित्र आत्मा मेरी खुली हुई बाइबल में से मुझे मसीह का दर्शन कराए और मेरे लिए वचन का प्रकाशन प्रकट करे। उसने मुझे उस मिट्टी के फर्श पर घुटने टेकने के द्वारा जो सिखाया वह मैं विश्व की सेमिनारियों और कॉलेजों में नहीं सीख सकता था। मेरे प्रियो, यह सत्य है, जितना अधिक आप प्रार्थना में समय देंगे, परमेश्वर की निकटता में बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपको उतना ही अधिक ज्ञान से भरपूर करेगा। तब उसने कहा, मैं डॉक्टर आयरन साइट को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, अतः वह समझता है कि उन्होंने भी अपनी सेवा में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने का अभ्यास किया था। मुझे स्मरण है कि सुलेमान के श्रेष्ठ गीत का अध्ययन कराते समय उन्होंने हमसे कहा था कि वह टीकाओं से सीख कर संतुष्ट नहीं हुए, अतः उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि वह उन्हें उस पुस्तक का संदेश समझाए। उन्होंने श्रेष्ठ गीत पर अपनी टीका लिखी और मैं सच कहता हूं कि एकमात्र वही व्याख्या है जिससे मेरे मन को शांति मिली है। यह एक अति अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यह कैसे होगा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। एकमात्र वही है जो हमारी आंखों को खोलेगा और परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे मित्रों, आपकी बुद्धि नहीं मन की आंखें जिसे वचन को अंतर्ग्रहण करना है। कोई बौद्धिक स्तर पर अत्यधिक विकसित हो, परंतु आवश्यक नहीं कि वह आत्मिक सच्चाई को अंतर्ग्रहण कर पाए। धर्मशास्त्र मन की समझ पर बुद्धि की समझ से अधिक बल देता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस लिखता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे मित्रों, मैं संगीत के विषय सर्वथा अज्ञानी हूं। मेरे लिए संगीत काला अक्षर भैंस बराबर है। परंतु एक संगीतकार ने सार्वजनिक दावा किया कि वह किसी को भी गाना सिखा सकता है। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बोला, भाई, यहां आपके पास एक शिष्य है, मुझे कभी कोई गाना नहीं सिखा पाया है। कलीसिया में हंसी का फवारा छूट गया। हमने समय निर्धारित किया और मैं प्रति गुरुवार उसके पास संगीत सीखने जाने लगा। एक महीने के बाद वह हार गया और बोला, आप सही कहते थे, आप कभी संगीत नहीं सीख पाएंगे। मैंने पूछा, मैं कैसे सीख सकता हूं? उसने कहा, केवल नया जन्म लेकर, अर्थात फिर से सांसारिक जन्म लेकर। मेरे प्रियो, जहां तक आत्मिक ज्ञान का प्रश्न है, परमेश्वर के आत्मा के बिना उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में यही लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरे मित्रों, एक वृद्ध महिला थी जिसे सब दादी जी कहते थे। वह लिखना और पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय में बाइबल स्कूल के प्रथम वर्ष में एक जवान था और वह सोचता था कि मुझे सब कुछ आता है। एक दिन वह उसके घर गया और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय से उसे समझाने लगा। उसने सोचा कि मैं उसके लिए इसे आसान बना देता हूँ। 5 मिनट सुनने के बाद उसने कहा, बेटा क्या आपने इस अध्याय में एक बात पर ध्यान दिया है? और वह उस अध्याय में से मुझे अर्थात उस भाई को बताने लगी और वह कहता है कि मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वह पढ़ना लिखना तो जानती नहीं थी, तो फिर उसे यह अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? वह उन बातों का ज्ञान रखती थी जो उसने टीकाओं में नहीं पढ़ी थी। वह कैसे जानती थी? उसके मन की आंखें परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने खोल दी थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा आज भी हमें शिक्षा देना चाहता है। परमेश्वर के लोगों का वचन में ना होने का एक कारण यह भी है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे मुझ जैसे अज्ञानी प्रचारक या आवासीय बाइबल अध्ययन पर निर्भर करते हैं। इनका अपना महत्व है, परंतु मेरे भाइयों, आप पवित्र आत्मा को शिक्षा क्यों नहीं देने देते हैं? धर्मशास्त्र के मनन में समय लगाएं। जब आपके सामने ऐसा अंश आए जो आपके लिए निरर्थक हो, तो आप घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उससे कहें, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे सिखाइए। मैं ऐसा ही करता हूं। वह मुझे शिक्षा देता है और मैं विश्वास करता हूं कि वह आपको भी सिखाएगा। जी हां, क्योंकि वह आपको भी सिखाना चाहता है। हम देखते हैं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि हमें प्रभु में उत्तराधिकार प्राप्त है। हमें यह भी जानना है कि हम में भी उसका उत्तराधिकार है। मेरे विचार में कनान देश इसका अच्छा उदाहरण है। वह देश परमेश्वर का था और उसने इसराइल के वंशजों को उसे दे दिया। इसराइल उस देश में बंधा हुआ है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर संपूर्ण जगत का अधिकार ले लेगा और इसराइल की प्रजा तथा देश पर दावा करेगा। आज हम विश्वासी उसकी कलीसिया हैं और परमेश्वर हमारे मध्यस्थ से काम करता है, परंतु एक दिन हम उसके साथ राज्य करेंगे। वह हमें अपना उत्तराधिकार घोषित करके अपनाएगा। मैं इस पर प्रायः सोचता हूँ, परंतु यह मेरे लिए अत्यधिक गूढ़ है। मुझे इसे वास्तविक बनाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, पौलुस अपनी याचना में आगे कहता है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 19 पद में, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। ध्यान दें, यह सामर्थ्य और शक्ति कैसे महान है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। ध्यान दीजिए, यह मसीह के या मसीह को मृतकों में से जी उठाने का सामर्थ्य है। महान सामर्थ्य, यह पुनरुत्थान का ही नहीं मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाने वाला सामर्थ है और वही स्वर्गरोहण का सामर्थ भी है। हम आज स्वर्गरोहण पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, हम बड़ा दिन और ईस्टर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु उसके बाद की घटनाओं को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी उस शक्ति के बारे में सोचा है जो प्रभु यीशु को फिर से परमेश्वर की दाहिने ओर ले गई? मेरे मित्रों, यह सामर्थ्य है एक मिसाइल की शक्ति पर विचार करें जो उसे अंतरिक्ष में ले जाती है, वह शक्ति जो मनुष्य को चांद पर ले गई और लौटा लाई। यह भौतिक शक्ति है, प्रभु यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर ले जाने वाला सामर्थ्य वही है जो हमारे पास है। यही कारण है कि पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासी उस सामर्थ्य को पहचाने। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। यह पौलुस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज मेरे और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस एक अति महान स्वर पर अंत करता है, कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है। एक दिन सब कुछ उसके अधीन होगा। इब्रानियों का लेखक इसे स्पष्ट करता है, 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए कि जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। मेरे प्रियो, आज उसके अधीन केवल कलीसिया है, अर्थात सच्चे विश्वासी। ऐसे भी विश्वासी समूह है जो प्रभु यीशु की बात नहीं मानते। ये कलीसियाएं अपाहिज हैं। सबसे दुखद दृश्य वह है जिसमें एक बच्चा असहाय बिस्तर पर लेटा हो, जैसे कि उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया हो। मैंने ऐसी अनेक कलीसियाएं देखी हैं, अनेक विश्वासी देखे हैं जिनका व्यवहार दर्शाता है कि उन्हें मसीह से कोई अर्थ नहीं। देह का सिर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पाते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी छोटी उंगली हिला सकता हूं क्योंकि मेरा सिर नियंत्रण करता है। और जब आपका सिर मसीह चाहता है कि आप यहां वरदानों का उपयोग करें तो आप केवल प्रेम में उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। आज यह कैसा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया और कलीसिया से हमारे संबंधों को इस प्रकार दर्शाता है, 1 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहां ध्यान देने की बात यह है कि मसीह देह का सिर है, देह उसकी कलीसिया है और हम उसके नियंत्रण में हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप मसीह के अंग हैं और उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उससे अलग हैं, आप उसके नियंत्रण में नहीं हैं, आप मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, चाहे आप कलीसिया में प्रतिदिन भागी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार के कलीसिया में जाते हैं, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है, लेकिन यदि आप मसीह के देह में हैं तो आप निश्चय ही परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आज आपके पास में मौका है कि आप प्रभु यीशु के पास आएं, अपने जीवन को ठीक करें और उस कलीसिया अर्थात उस देह में जुड़ जाएं, ताकि आप भी उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो कलीसिया के रूप में परमेश्वर मुझे और आपको अर्थात हर एक विश्वासी को देना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर का प्रेम महान है और वह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपसे वह प्रेम करे? यदि हाँ, तो आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंप दें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझ लिया है। इतना ही नहीं, आपने इस बात को जान लिया है कि कलीसिया एक देह है, हम हर एक विश्वासी अलग अलग अंग हैं और इसका सिर मसीह है। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर।